कल्पना कीजिए कि हम एक बहुत ही प्राचीन गैलरी में खड़े हैं और हमारे सामने उत्पत्ति की पुस्तक मतलब जेनेसिस के पहले अध्याय की एक विशाल हजारों साल पुरानी पेंटिंग रखी है।
अच्छा।
हाँ, और अक्सर ऐसा होता है कि हम उस प्राचीन पेंटिंग को अपने आधुनिक कैमरों वाले नजरिए से देखते हैं। हम सोचते हैं कि ये एक बिल्कुल सटीक वैज्ञानिक फोटोग्राफ होनी चाहिए, लेकिन असल में वो कैनवस रंगों और आकृतियों के जरिए कुछ और ही कह रहा है।
बिल्कुल, मतलब वो कोई विज्ञान की रिपोर्ट नहीं है।
सही कहा, वो अर्थ और उद्देश्य से भरी एक उत्कृष्ट कलाकृति है और आज हम इसी कलाकृति यानी जेनेसिस के पहले और दूसरे अध्याय में वर्णित सृष्टि के 7 दिनों की संरचना पर अपनी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। मैं इस डीप डाइव को लेकर काफी उत्साहित हूँ।
मैं भी। ये तुलना मुझे बहुत सटीक लगती है। हम अक्सर प्राचीन ग्रंथों को अपनी आधुनिक दुनिया के चश्मे से देखने की भूल कर बैठते हैं, है ना? हम उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो प्राचीन लेखक मतलब पूछ ही नहीं रहे थे।
एकदम सही।
और जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस रचना के असली संदेश को, उसकी गहराई को पूरी तरह से चूक जाते हैं।
और यही आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का लक्ष्य भी है। हमारे पास स्रोत के रूप में डॉक्टर केनेथ मैथ्यूज के गहन शोध और व्याख्यान मौजूद हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि प्राचीन लेखक चीजों को कैसे देख रहे थे और ईश्वर की छवि में रचे जाने का असल मतलब क्या है।
हाँ, और ये भी कि ये प्राचीन पाठ अपने समय के अन्य मिथकों से किस तरह एकदम अलग खड़ा था।
बिल्कुल, लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा में गहराई तक जाएं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना आवश्यक है। हम इस प्राचीन पाठ का एक विशुद्ध अकेडमिक और ऐतिहासिक विश्लेषण कर रहे हैं।
जी, ये बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है।
हाँ, मतलब हम यहाँ किसी भी धार्मिक या वैचारिक मान्यता का समर्थन या पक्षपोषण नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी मत को सही या गलत ठहरा रहे हैं। हमारा काम केवल पूर्ण निष्पक्षता के साथ उन विचारों और अर्थों को सामने रखना है जो मूल स्रोत सामग्री में मौजूद है।
बिल्कुल, ये इतिहास और मानव विचार के विकास को समझने की एक वस्तुनिष्ठ यात्रा है। हमें उस समय के लोगों की मानसिकता में प्रवेश करना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि वे दुनिया को किस नजरिए से देख रहे थे।
सही बात है। खैर, चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं जेनेसिस के बिल्कुल पहले वाक्य से। शुरुआत में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। देखने में तो ये एक बहुत ही सीधा और सरल वाक्य लगता है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई खास साहित्यिक ढांचा छिपा है?
उसे एक पंक्ति में असल में ब्रह्मांड की पूरी रूपरेखा छिपी है। एक बहुत गहरी घोषणा है। डॉक्टर मैथ्यू स्पष्ट करते हैं कि यहाँ आकाश और पृथ्वी का इस्तेमाल एक मेरिज्म के रूप में हुआ है।
मेरिज्म? ये शब्द थोड़ा अकादमिक लग रहा है, इसे हम सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं?
हाँ, मैं समझाता हूँ। मेरिज्म भाषा साहित्य का एक ऐसा अलंकार है, मतलब जिसमें दो बिल्कुल विपरीत सिरों या शब्दों का इस्तेमाल संपूर्णता को दर्शाने के लिए किया जाता है, सब कुछ बताने के लिए।
अच्छा, जैसे हम आम बोलचाल में कहते हैं।
बिल्कुल, एक आम उदाहरण लें। अगर कोई कहता है कि मैंने ये शहर दिन रात छाना है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने केवल सूरज निकलने और चांद निकलने के ठीक समय पर काम किया।
हाँ, उसका मतलब है कि उसने हर समय काम किया।
एकदम सही। उसी तरह प्राचीन इब्रानी भाषा में आकाश और पृथ्वी का मतलब सिर्फ ऊपर का आसमान और नीचे की मिट्टी नहीं है, इसका मतलब है ब्रह्मांड की हर एक चीज, दृश्य और अदृश्य, सब कुछ। ये एक बुनियादी घोषणा है कि अस्तित्व में जो कुछ भी है वो वहीं से शुरू हुआ।
अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब ये पूरी दुनिया को समेटने का एक काव्यात्मक तरीका है। लेकिन इसके तुरंत बाद पाठ कुछ अजीब कहता है। वहाँ लिखा है कि पृथ्वी निराकार और खाली थी।
हाँ, निराकार और खाली।
और वहाँ गहरा अंधेरा था और जल के ऊपर एक आत्मा मंडरा रही थी। ये दृश्य बिल्कुल एक खाली और खौफनाक कैनवस जैसा लगता है, जहाँ अभी तक कोई जीवन संभव नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अव्यवस्थित है।
यहीं से प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान की समझ शुरू होती है। उस निराकार और खाली अवस्था को एक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
एक समस्या के रूप में?
हाँ, देखिए, जीवन के पनपने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो रूप या आकार और दूसरा उस आकार को भरने वाली सामग्री। और यहीं से वो प्रसिद्ध 6+1 का ढांचा शुरू होता है। अगले 6 दिन असल में उस निराकार और खालीपन की समस्या को सुलझाने की एक बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है।
मुझे ये प्रक्रिया बिल्कुल एक घर बनाने जैसी लगती है। अगर हम इसे इस तरह देखें, पहले 3 दिन ईश्वर एक आर्किटेक्ट की तरह काम करते हैं। वे स्पेस यानी जगह बनाते हैं, है ना?
बिल्कुल, बहुत अच्छी एनालॉजी है ये।
हाँ, मतलब पहले दिन रोशनी को अंधकार से अलग किया जाता है, दूसरे दिन आसमान और समुद्र के बीच का बंटवारा होता है ताकि मौसम का ढांचा बन सके, और तीसरे दिन पानी को समेट कर सूखी जमीन बनाई जाती है। ये एक घर की बुनियाद, दीवारें और छत खड़ी करने जैसा है।
सही है।
और फिर अगले 3 दिन यानी दिन 4, 5 और 6 में वे एक इंटीरियर डिजाइनर बन जाते हैं और उस खाली जगह को निवासियों से भरते हैं।
ये एक बहुत ही शानदार तुलना है और ये उस पाठ की साहित्यिक समरूपता को पूरी तरह से पकड़ लेती है। अगर हम ध्यान दें तो पहले दिन बनी रोशनी के स्थान को चौथे दिन सूरज, चांद और तारों से भरा जाता है।
अच्छा, हाँ।
और दूसरे दिन बने आसमान और समुद्र को पांचवें दिन पक्षियों और मछलियों से आबाद किया जाता है। तीसरे दिन बनी सूखी जमीन को छठे दिन जानवरों और अंततः इंसानों से भरा जाता है।
ये तो मतलब बहुत ही व्यवस्थित है।
बिल्कुल, ये कोई बेतरतीब घटनाक्रम नहीं है, ये एक घोर अव्यवस्था से पूर्ण व्यवस्था की ओर जाने का एक बहुत ही सुविचारित और तार्किक प्रवाह है।
और इस पूरी प्रक्रिया में तीसरे दिन की एक खास बात मुझे बहुत हैरान करती है, जिस पर स्रोत सामग्री में भी जोर दिया है। तीसरे दिन जब वनस्पति उगने की बारी आती है तो ईश्वर सीधे तौर पर जादुई तरीके से पेड़ पौधे नहीं बनाते।
हाँ, ये एक बहुत बारीक बिंदु है, बल्कि वे भूमि को निर्देश देते हैं कि भूमि वनस्पति उत्पन्न करे। यहाँ भूमि सिर्फ एक निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि एक मध्यस्थ के रूप में काम कर रही है। ये सच में सोचने वाली बात है।
ये हिस्सा सच में बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जो भूमि पहले असीम पानी के नीचे दबी थी, जो जीवन को सहारा नहीं दे सकती थी, वही भूमि अब ईश्वर के निर्देश से जीवन को जन्म देने का एक सक्रिय माध्यम बन जाती है।
तो वो इस तरह से शक्ति दे रहे हैं।
हाँ,
यह हमें बताता है कि जेनेसिस के नजरिए से निर्माण केवल चीजों को हवा में से प्रकट कर देना नहीं है, बल्कि उस रची गई दुनिया को एक क्षमता, एक कार्यप्रणाली सौंपना है। ईश्वर अपनी सृष्टि को खुद कुछ उत्पन्न करने का अधिकार दे रहे हैं।
ठीक है, अगर ये सब इतनी बारीकी और व्यवस्था के साथ हो रहा है तो यहाँ समय को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठना लाजमी है। ये दिन आखिर है क्या? श्रोत में हिब्रू शब्द योम का काफी जिक्र है। अक्सर हम सुनते हैं कि ये 24 घंटे का एक सामान्य दिन है, लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी तार्किक उलझन हो रही है।
क्या उलझन है?
अगर सूरज, चांद और तारों को चौथे दिन बनाया गया था तो हम पहले, दूसरे और तीसरे दिन को 24 घंटे का सौर दिन कैसे मान सकते हैं? मतलब बिना सूरज के हम दिन और रात की गणना कैसे कर सकते हैं? ये तो वैज्ञानिक रूप से असंभव लगता है।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और यहीं पर इतिहास, साहित्य और आधुनिक विज्ञान के बीच की सबसे बड़ी बहस जन्म लेती है। डॉक्टर मैथ्यूज के शोध के अनुसार हिब्रू शब्द योम का अर्थ हमेशा एक जैसा नहीं होता।
अच्छा?
हाँ, बाइबल के ही अन्य हिस्सों में ये शब्द 12 घंटे के दिन के लिए, 24 घंटे के दिन के लिए और कभी कभी एक बहुत लंबे कालखंड या युग के लिए भी इस्तेमाल हुआ है।
तो फिर यहाँ लेखक का असल इरादा क्या था? मतलब अगर सूरज नहीं था तो वे दिन कैसे गिन रहे थे?
डॉक्टर मैथ्यूज और कई भाषाविदों का निष्कर्ष यह है कि ये पाठ दृश्यात्मक भाषा या घटनात्मक भाषा का उपयोग करता है। इसे अंग्रेजी में फिनोमिनोलॉजिकल लैंग्वेज कहते हैं।
फिनोमिनोलॉजिकल लैंग्वेज, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि लेखक हमें कोई खगोलीय या वैज्ञानिक सटीकता नहीं दे रहा है, बल्कि वो चीजों को वैसे बयां कर रहा है जैसे वे किसी इंसान की आंखों को दिखाई देती। जब वे कहते हैं शाम हुई और सुबह हुई, तो ये समय नापने की कोई घड़ी नहीं है।
तो फिर ये क्या दर्शा रहा है?
ये अंधेरे से उजाले की ओर और व्यवस्था से व्यवस्था की ओर बढ़ने के एक साहित्यिक चरण को दर्शाता है। प्राचीन लेखक का ध्यान इस पर था कि ये सब किसने और क्यों किया, ना कि इस पर कि इसमें कितने घंटे लगे।
ओह, मुझे लगता है मैं इसे समझ रही हूँ। ये तो बिल्कुल हमारे रोजमर्रा के मौसम विज्ञानियों जैसा है।
वो कैसे?
मतलब वो आज भी टीवी पर आकर कहते हैं कि कल सूर्योदय सुबह 6 बजे होगा और सूर्यास्त शाम को 7 बजे, जबकि हम बुनियादी विज्ञान के जरिए जानते हैं कि सूरज ना तो कहीं उगता है और ना ही कहीं डूबता है।
बिल्कुल, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है।
हाँ, तो उनका सूर्योदय कहना कोई वैज्ञानिक झूठ नहीं है, है ना? वो बस इंसानी अनुभव के नजरिए से चीजों को बताने का एक स्थापित और व्यवहारिक तरीका है।
यही इसका सार है। प्राचीन पाठकों को ब्रह्मांड की उम्र या भूविज्ञान नहीं सिखाई जा रही थी, उन्हें यह बताया जा रहा था कि इस व्यवस्थित ब्रह्मांड के पीछे एक बुद्धिमान शक्ति है।
सही है।
और जब हम इस साहित्यिक और दृश्यात्मक भाषा के रहस्य को समझ जाते हैं, तब हम इस पूरी कथा के चरम बिंदु पर पहुंचते हैं, यानी छठे दिन के सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी हिस्से पर, मानवता की रचना।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जेनेसिस के पहले अध्याय के 26वें से 28वें श्लोक में जब इंसानों के निर्माण की बात आती है तो कहानी का पूरा लहजा ही बदल जाता है।
हाँ, एकदम बदल जाता है।
ईश्वर जानवरों के बारे में केवल बात करते हैं, उन्हें बनाते हैं, लेकिन जब इंसान की बारी आती है तो वे इंसानों से सीधे बात करते हैं। और यू नो, सबसे बड़ी घोषणा ये होती है कि उन्हें ईश्वर की छवि में बनाया गया है। ये छवि होना असल में है क्या?
इस शब्द ईश्वर की छवि की गहराई को समझने के लिए हमें आज के समय से बाहर निकलकर उस समय के प्राचीन निकट पूर्व की दुनिया में झांकना होगा, जिसे एंशिएंट नियर ईस्ट कहते हैं। उस समय मिस्र या मेसोपोटामिया जैसे विशाल साम्राज्य थे। उन संस्कृतियों में छवि या देवताओं का पुत्र केवल एक ही व्यक्ति को माना जाता था, और वो था वहां का राजा।
सिर्फ राजा?
हाँ। उदाहरण के लिए मिस्र में फेराओ को देवता हॉरस का जीवित अवतार माना जाता था। बाकी आम जनता बस उनकी सेवा के लिए थी, उनका अपना कोई खास दर्जा नहीं था।
और जहां तक मैंने पढ़ा है, वे प्राचीन राजा लोग अपनी ताकत और अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए मूर्तियां या पत्थर के विशाल खंभे, जिन्हें स्टेला कहा जाता है, वे भी तो लगाते थे।
बिल्कुल, यही बात इस अवधारणा की चाबी है। जब कोई प्राचीन राजा किसी नए इलाके को जीतता था या किसी दूर दराज के क्षेत्र पर अपना शासन कायम करता था, तो वो वहां अपनी छवि वाला एक पत्थर का स्मारक खंभा खड़ा कर देता था,
अपना दबदबा दिखाने के लिए।
हाँ, वो खंभा वहां के निवासियों को यह स्पष्ट संदेश देता था कि भले ही राजा यहां शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन ये इलाका उसी के अधिकार क्षेत्र में आता है और ये खंभा उसका प्रतिनिधित्व करता है।
ओहो, तो अगर हम इस ऐतिहासिक संदर्भ को जेनेसिस के पाठ में रखें, तो ये पाठ जो कर रहा है वो समाज का एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिकरण है।
एकदम सही पकड़ा आपने।
मतलब ये खुलेआम ये घोषणा कर रहा है कि केवल कोई एक राजा, सम्राट या फराओ ईश्वर की छवि नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद हर एक आम पुरुष और स्त्री ईश्वर का वो स्मारक खंभा है, उनका हैंडप्रिंट है।
ये निष्कर्ष बिल्कुल सटीक है, और सोचिए ये उस युग के हिसाब से कितना बड़ा और क्रांतिकारी विचार रहा होगा। ये पाठ हर एक इंसान को शाही दर्जा दे रहा है।
दिमाग घुमा देने वाला विचार है ये।
बिल्कुल, इंसान को इस दुनिया पर शासन करने के लिए एक प्राप्त अधिकार दिया गया है। वे ईश्वर के उपशासक हैं, वाइस रीजेंट्स, जिन्हें इस दुनिया की देखभाल उसी तरह करनी है जैसे एक न्यायप्रिय राजा करता है। उनका काम दुनिया का शोषण करना नहीं, बल्कि उसे संवारना है।
लेकिन यहाँ एक गहरा दार्शनिक सवाल ये उठता है कि क्या छवि का मतलब ये है कि हम ईश्वर जैसे दिखते हैं? मतलब क्या इसका कोई शारीरिक अर्थ है?
डॉक्टर मैथ्यूज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि छवि शारीरिक समानता या यहाँ तक कि सिर्फ हमारी बौद्धिक क्षमता के बारे में नहीं है।
तो फिर ये किस बारे में है?
इसे समझने के लिए हमें प्रकृति और व्यक्तित्व के बीच का अंतर समझना होगा।
प्रकृति और व्यक्तित्व, ये थोड़ा जटिल लग रहा है।
इसे हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं?
देखिए, एक पक्षी की अपनी एक जैविक प्रकृति होती है। वो गाता है, उसके पास आंखें हैं, वो घोंसला बनाता है। एक इंसान भी गाता है और उसके पास भी आंखें हैं।
इरे, पक्षी के पास व्यक्तित्व या चेतना नहीं है, वो अपने अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाता। इंसान होने का मतलब सिर्फ एक जैविक ढांचा होना नहीं है, बल्कि एक अनोखी पहचान रखना है जिससे गहरे रिश्ते बनाए जा सकें।
रिश्ते?
हाँ, एक दूसरे के साथ और उस शक्ति के साथ जिसने उन्हें बनाया है। ये क्षमता ही हमें छवि बनाती है।
स्रोत सामग्री में इसके लिए एक बहुत ही हृदय स्पर्शी उदाहरण दिया गया था, डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारी का उदाहरण। ये मुझे इस बहुत सोचने पर मजबूर कर गया।
हाँ, ये उदाहरण इस पूरी अवधारणा की जान है। अगर ईश्वर की छवि का मतलब सिर्फ हमारी बुद्धिमत्ता, सोचने समझने की क्षमता या तर्क करने की ताकत होती, तो उस इंसान का क्या होगा जो डिमेंशिया का शिकार हो जाता है?
सही बात है।
या उस बच्चे का क्या होगा जो किसी दिमागी अक्षमता के साथ पैदा होता है? क्या वे कम इंसान हैं? जेनेसिस के दर्शन के अनुसार बिल्कुल नहीं। भले ही कोई व्यक्ति अपनी पूरी बौद्धिक या शारीरिक क्षमता खो दे, वो फिर भी पूरी तरह से ईश्वर की छवि है, क्योंकि ये छवि हमारी कार्य क्षमता के बारे में नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ एक विशेष संबंध रखने की अंतर्निहित क्षमता के बारे में है।
ये बहुत ही सशक्त और मानवीय विचार है। मतलब हर एक जीवन, चाहे उसकी दिमागी या शारीरिक क्षमता कुछ भी हो, उसका मूल्य अनंत है, क्योंकि वो उस रचयिता का एक प्रतिनिधि है।
बिल्कुल।
अब अगर हम मानवता की इस अनूठी कहानी से थोड़ा पीछे हटें और इस पूरे ग्रंथ की तुलना उस समय के अन्य धर्मों या मिथकों से करें, तो ये पाठ कितना अलग खड़ा होता है।
अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो जेनेसिस केवल दुनिया के निर्माण की एक कहानी नहीं है, बल्कि ये अपने आसपास के साम्राज्यों के मिथकों का एक बहुत बड़ा और साहसिक खंडन है।
खंडन? कैसे?
प्राचीन निकट पूर्व में निर्माण को लेकर तीन तरह के मिथक बहुत आम थे। पहला ये कि देवता खुद पैदा होते हैं। दूसरा था योद्धा प्रसंग।
योद्धा प्रसंग, क्या इसका मतलब है कि प्राचीन लोग मानते थे कि दुनिया देवताओं के बीच मारकाट से बनी है?
हाँ, और इसके पीछे उनका अपना तर्क था। प्राचीन लोगों का जीवन बहुत कठिन था, बाढ़ आती थी, बीमारियां थी, उन्हें लगता था कि प्रकृति हिंसक है, इसलिए उनकी कहानियों में दुनिया का निर्माण हमेशा किसी भयंकर युद्ध का नतीजा होता था।
बाप रे।
बेबीलोन के मिथकों में देवता अक्सर अराजकता के देवताओं या समुद्र के भयानक राक्षसों से लड़ते थे। उस लड़ाई में जो जीतता था वो मरे हुए राक्षसों के शरीर से दुनिया बनाता था। लेकिन जेनेसिस में वहां कोई युद्ध नहीं है, ईश्वर का किसी बुरी शक्ति से कोई मुकाबला नहीं है। वे बस अधिकार पूर्वक बोलते हैं ये हो जाए, और ब्रह्मांड बिना किसी विरोध के उस आदेश का पालन करता है।
कोई संघर्ष नहीं, कोई पसीना नहीं।
ये सच में एक बहुत बड़ा अंतर है।
और तीसरा मिथक जो श्रोत में बताया गया है वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, यौन प्रजनन वाला मिथक। बाकी प्राचीन संस्कृतियों में दुनिया कैसे बनती थी? नर और मादा देवताओं के शारीरिक संबंधों से।
बिल्कुल। आप किसी भी प्राचीन संस्कृति को देख लें, वहां हमेशा एक पिता आकाश और माता पृथ्वी की अवधारणा होती थी। उनका मानना था कि बारिश देवताओं का बीज है जो पृथ्वी को उपजाऊ बनाता है।
अजीब है ना?
हाँ, लेकिन जेनेसिस इस विचार के पूरी तरह से विपरीत खड़ा होता है। ये उस समय के लिए पूरी तरह से काउंटर कल्चरल था, क्योंकि इस पूरे पाठ में किसी महिला देवी का कोई नामो निशान नहीं है। ईश्वर और प्रकृति के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं है।
मतलब ये प्रकृति का हिस्सा नहीं है?
एकदम नहीं। ईश्वर प्रकृति से पूरी तरह अलग और स्वतंत्र हैं।
ये वाकई में उस समय के हिसाब से बहुत ही साहसिक और विद्रोही बयान रहा होगा। वे अपने आसपास की दुनिया को बता रहे थे कि तुम्हारा नजरिया गलत है। और केवल प्राचीन पूर्व क्यों? अगर हम इसे बाद के ग्रीको रोमन दर्शन के साथ रखें, जहां प्लेटो और अरस्तु जैसे महान विचारक थे, वहां भी ये दर्शन बहुत अलग दिखता है।
ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। ग्रीक दर्शन में ईश्वर की जो कल्पना थी वो इतिहास और समय से बहुत दूर की थी। अरस्तु का ईश्वर एक विशुद्ध विचार था, एक अनमूव्ड मूवर जो दुनिया को गति तो देता है लेकिन दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता।
एकदम कटा हुआ।
हाँ, दार्शनिक भाषा में कहें तो यह एक मैं और यह का संबंध था, मतलब एक निर्जीव, भावनाहीन और दूर का रिश्ता।
लेकिन जेनेसिस का ईश्वर बहुत ही व्यक्तिगत है। वह सिर्फ ब्रह्मांड बनाकर छोड़ नहीं देता, वह इंसानों से बात करता है, उनके लिए एक बगीचा लगाता है, मतलब उनके साथ एक मैं और तुम का गहरा व्यक्तिगत रिश्ता बनाता है।
यही वो बिंदु है जो इस पाठ को साहित्य और इतिहास में इतना अनूठा बनाता है। यह सिर्फ दुनिया की उत्पत्ति की एक ठंडी व्याख्या नहीं कर रहा है, बल्कि यह बता रहा है कि वो उत्पत्ति एक गहरे व्यक्तिगत रिश्ते के लिए हुई थी। और यह व्यक्तिगत रिश्ता सबसे ज्यादा निखर कर सामने आता है सातवें दिन की अवधारणा में।
हाँ, सातवां दिन यानी सबात का दिन। हमने 6 दिन पूरे कर लिए। अब हम अध्याय 2 की शुरुआत में आते हैं, जहाँ बताया गया है कि ईश्वर अपना काम खत्म करते हैं और विश्राम करते हैं।
और यही पर पूरे ढांचे का सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत हिस्सा छिपाया। अगर हम पहले 6 दिनों के अंत को ध्यान से पढ़ें, तो हर दिन के बाद एक ही पंक्ति दोहराई जाती है।
कौन सी पंक्ति?
और शाम हुई और सुबह हुई पहला दिन, शाम हुई और सुबह हुई दूसरा दिन। ये चक्र 6 दिन तक चलता है। लेकिन 7वें दिन के विवरण में ये पंक्ति पूरी तरह से गायब है।
गायब है? मतलब 7वें दिन में कोई शाम हुई और सुबह हुई नहीं लिखा गया?
बिल्कुल नहीं लिखा गया। पाठ में कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि 7वां दिन खत्म हो गया। डॉक्टर मैथ्यूज और कई विद्वानों का मानना है कि ये कोई भूल नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा अर्थ है।
क्या अर्थ है इसका?
एक तरह से कभी खत्म ही नहीं हुआ। ये विश्राम आज भी जारी है, और पूरी सृष्टि, खास तौर पर मानवता को इस निरंतर चलने वाले विश्राम और ईश्वर के साथ उस रिश्ते में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है।
तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने एक
निराकार और खाली ब्रह्मांड से अपनी यात्रा शुरू की। एक व्यवस्थित 6 दिन के ढांचे को देखा, जहां प्रकाश, पानी और जमीन को आकार दिया गया और फिर उसे जीवन से भरा गया। हमने यह समझा कि ये भाषा वैज्ञानिक नहीं, बल्कि हमारे इंसानी अनुभव के नजरिए से लिखी गई है। हमने ये भी देखा कि कैसे उस प्राचीन दुनिया में हर इंसान को राजाओं वाला गरिमापूर्ण सम्मान दिया गया, बिना किसी भेदभाव के, और अंत में एक ऐसा विश्राम जो कभी खत्म नहीं होता।
हाँ, ये पूरी चर्चा हमें ये दिखाती है कि कैसे प्राचीन इंसान अपने अस्तित्व, अपनी गरिमा और ब्रह्मांड के पीछे की शक्ति को समझ रहा था। ये सिर्फ भौतिक निर्माण की कहानी नहीं है, बल्कि ये उद्देश्य, अर्थ और मूल्य के निर्माण की कहानी है। यह हमें बताती है कि हम किसी अराजकता का नतीजा नहीं है।
और शुरुआत में जो हमने उस 4000 साल पुरानी पेंटिंग की बात की थी, जब हम उस पेंटिंग के बहुत करीब खड़े होते हैं कि हमें केवल ब्रश के स्ट्रोक्स दिखाई दें, तो शायद हम बस ये बहस करते रहें कि ये रंग यहाँ क्यों है या वो लकीर वहाँ क्यों है, जैसे कि दिन 24 घंटे का था या नहीं।
बिल्कुल, हम छोटी चीजों में उलझ जाते हैं।
हाँ, लेकिन जब हम 2 कदम पीछे हटते हैं, तभी हमें वो पूरी शानदार तस्वीर नजर आती है। एक ऐसी तस्वीर जो इंसान को असीमित महत्व देती है और जो अराजकता पर शांति को चुनती है।
एकदम सही।
अंत में एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी गहराई से चिंतन कर सकते हैं। अगर जेनेसिस के अनुसार इस दुनिया के निर्माण का चरम बिंदु यानी वो 7वां दिन एक ऐसा विश्राम है जो कभी आधिकारिक तौर पर खत्म ही नहीं हुआ है, और अगर मानवता आज भी उस विश्राम के निमंत्रण में जी रही है, तो ये विचार आधुनिक समय की हमारी इस हसल कल्चर और हमेशा काम करते रहने की होड़ को कैसे चुनौती देता है।
सोचने वाली बात है।
जहां हर कोई हर वक्त भाग रहा है, कुछ न कुछ साबित करने में लगा है, क्या हम इस ब्रह्मांड की सबसे अनूठी रचना होने के बावजूद असल में रुकना, सांस लेना और आराम करना भूल गए हैं?